आधार पर अब वन में गए हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनकी विमाता ने कहा था कि वे अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उनके गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है। और इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि ध्रुव महाराज न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे अपने पिता महाराज उत्तानपाद से, जो कि वहां उपस्थित थे, किंतु महाराज उत्तानपाद मौन रहे थे, उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया था, इसलिए ध्रुव महाराज अपमानित होकर आए थे अपनी माता के पास, जो महाराज उत्तानपाद के द्वारा उपेक्षिता थी। अब माता के उपदेश से ध्रुव महाराज वन में आए हैं भगवान हरि को तपस्या के द्वारा संतुष्ट करके उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए। और ध्रुव महाराज इस प्रकार का वरदान चाह रहे थे जो कि एक असंभव वरदान है। ध्रुव महाराज क्योंकि अपमानित हुए थे विमाता के द्वारा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, और विमाता ने उन्हें पिता की गोद और उनका राज सिंहासन ये दोनों से वस्तुतः वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोद में या राज सिंहासन में बैठना चाहते हो तो वन में जाकर तपस्या करना पड़ेगा, भगवान हरि को संतुष्ट करना पड़ेगा, और उनके वरदान से मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा और एक बार, तब जाकर तुम पिता की गोद या राज सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब ध्रुव महाराज अब पिता की गोद या पिता का राज सिंहासन नहीं चाह रहे, अब उनको ऐसा राज्य चाहिए जिस राज्य को किसी ने भोग नहीं किया हो, और जो राज्य उनके पितामह और प्रपितामह उनके राज्य से भी उच्चतर राज्य हो। तो ध्रुव महाराज के पिता थे उत्तानपाद, उनके पिता हुए स्वयंभु मनु, और स्वयंभु मनु के पिता हुए प्रजापति ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ध्रुव महाराज के प्रपितामह थे। तो ध्रुव महाराज चाहते थे अपने प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा के राज्य से भी उच्चतर राज्य, जो कि इस ब्रह्मांड में नहीं है, कोई राज्य नहीं है ब्रह्मा के राज्य से उच्चतर राज्य। ब्रह्मा का जो लोक है ब्रह्मलोक या सत्यलोक, इस ब्रह्मांड में 14 लोकों में से सबसे उच्चतम लोक है। इसके ऊपर ब्रह्मांड में और कोई लोक नहीं है, ब्रह्मलोक उच्चतम लोक है। किंतु ध्रुव महाराज चाह रहे हैं भगवान विष्णु की कृपा से उनको प्रसन्न करके ऐसे एक लोक उनको चाहिए जो ब्रह्मा जी के लोक से भी उच्चतम लोक हो। ये एक असंभव कामना लेकर ध्रुव महाराज वन में आए थे और तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करके ये वरदान प्राप्त होने के लिए। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज की इच्छा से अवगत थे, और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को किस प्रकार भगवान को तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है उसके संबंध में उपदेश दिया था। वस्तुतः नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु बने, उनको मंत्र दीक्षा प्रदान की। तो नारद मुनि के उपदेश को प्राप्त होकर ध्रुव महाराज अब मधुबन में पहुंचे। मधुबन ब्रजभूमि के द्वादश वनों में अन्यतम है और नारद मुनि ध्रुव महाराज से नारद मुनि ने कहा था कि ये मधुबन जहां सान्निध्यम नित्यदा हरे, जहां भगवान हरि या कृष्ण के सान्निध्य नित्य व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, अर्थात भगवान कृष्ण अपने धाम वृंदावन में नित्य निवास करते हैं और वहां पर कोई भी व्रत तपस्या किया जाता है, कोई भी मंत्र जप किया जाता है वृंदावन में या मधुबन में, तो वो तुरंत फल को प्रदान करता है। ये वृंदावन भूमि की महिमा है जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। और ध्रुव महाराज को अति शीघ्र वरदान चाहिए था, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें मधुबन भेज दिया, तुम वहीं जाओ और तपस्या करके भगवान कृष्ण को संतुष्ट करो जिससे कि तुम अति शीघ्र वरदान को प्राप्त हो जाओगे। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा था कि किस प्रकार यमुना के जल में त्रिकाल संध्या में स्नान करना और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना प्राणायाम के द्वारा, और जब मन और इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं तो भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करना। तो रूप का वर्णन भी नारद मुनि ने बताया था और भगवान की मूर्ति की पूजा करना ये भी बताया था। तो भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की मूर्ति की पूजा और भगवान के नाम जप, ये विधि जो भक्ति की विधि है, ये कोई केवल कोई कठोर तपस्या की विधि नहीं, ये भक्ति की विधि है। तो नारद मुनि ने भक्ति की विधि ही बताई थी ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज मधुबन में पहुंचकर प्रथम रात्रि उपवास रहे। यमुना में स्नान करने के उपरांत प्रथम रात्रि उपवास रहे, ये भगवान के धाम में जाने का नियम है कि जब व्यक्ति पहुंचता है तो उस दिन उपवास करता है। और दूसरे दिन से ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के बताए हुए मार्ग पर अपनी तपस्या प्रारंभ की। तो ध्रुव महाराज यमुना में त्रिकाल संध्या में प्रातःकाल द्विप्रहर अर्थात दोपहर का समय और संध्या काल में स्नान करते थे, भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे, जो भी वन में फल मूल प्राप्त होता था भोग लगाते थे और उसके बाद कुशासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते थे। और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन को नियंत्रित कर रहे थे और इस प्रकार भगवान का ध्यान कर रहे थे मन को नियंत्रित करने के उपरांत। तो जब ध्रुव महाराज इस प्रकार तपस्या में लगे हुए थे तो उन्होंने अपने खाद्य को भी नियंत्रित किया था, क्योंकि कोई यदि कोई व्रत अनुष्ठान करता है और विशेष रूप से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहता है तो खाद्य पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम आवश्यकता से अधिक खाद्य ग्रहण करेंगे, स्वादिष्ट खाद्य ग्रहण करने लगेंगे, तो हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए और मन को केंद्रित करने के लिए खाद्य पर संयम धारण करना यह आवश्यक है। तो ध्रुव महाराज ने यह निश्चय किया कि प्रथम मास, प्रथम महीना, उनकी तपस्या का जो प्रथम महीना था, तो प्रथम महीने में ध्रुव महाराज हर 3 दिन में एक बार खाद्य ग्रहण करते थे। प्रतिदिन नहीं, हर 3 दिन में एक बार खाद्य ग्रहण करते थे। और क्या खाद्य खाते थे कि वन में जो बेर उपलब्ध होता था या कैथ उपलब्ध होता था, जिसको कपित संस्कृत में कहा जाता है, इसी को ही खाते थे। ये कपित जो कैथ है इसको बंदर ही खाते हैं। तो ध्रुव महाराज बन के वेर और कैथ इसको खा रहे थे प्रथम महीना और हर 3 दिन में एक बार। इस प्रकार उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। और जब दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में उन्होंने खाद्य ग्रहण करने का ग्रहण करने की जो अवधि है, समय है, इसको बढ़ा दिया कि हर 6 दिन में वो खाद्य ग्रहण करने लगे। और कौन सा खाद्य? जो फल खा रहे थे प्रथम महीने में उसको बंद कर दिया। अब दूसरे महीने में हर 6 दिन में केवल वन के जो शुष्क पत्र हैं, सूखा हुआ पत्र जो झड़ता है वृक्ष से, या सूखा हुआ घास है, इसी को खाते थे। ये इतनी कठोर तपस्या आरंभ किए ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प उनका था कि वो किस प्रकार निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न करेंगे और उनका वरदान प्राप्त करेंगे। ये दृढ़ संकल्प था उनका। और जब तीसरा महीना आया तो ध्रुव महाराज ने ये जो सूखा पत्ता खा रहे थे उसको बंद कर दिया। अब तीसरे महीने में हर 9वें दिन में केवल जल पीकर रहने लगे। और जब चौथा महीना आया तो चौथे महीने में ध्रुव महाराज ने जल पीना भी बंद कर दिया। और हर 12 दिन में ये वायु सेवन करने लगे, क्योंकि तब तक ध्रुव महाराज प्राणायाम में दक्ष बन गए थे, प्राणायाम करने में, जिससे प्राण वायु को रोक सकते थे और अपनी इच्छा से छोड़ सकते थे। इस प्रकार वायु पर उनका नियंत्रण आ गया था। इसलिए हर 12 दिन में केवल वो वायु लेते थे। और 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने वायु लेना भी बंद कर दिया। और ये उनका बाह्य स्थिति थी, उनकी खाद्य ग्रहण की स्थिति। और आंतरिक स्थिति क्या थी कि उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित थी और उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के सुंदर रूप में केंद्रित था। ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे थे अपने हृदय में भगवान, क्योंकि उनका मन इतना केंद्रित हो गया था कि वो समाधिस्थ हो गए, उनका मन विचलित नहीं हुआ। इसलिए भगवान का दर्शन करना, जिस प्रकार नारद मुनि ने बताया था, भगवान के रूप का वर्णन किया था, तो उसी रूप का ध्यान करने लगे। और वस्तुतः भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, ध्रुव महाराज के हृदय में भी निवास करते थे, तो भगवान प्रकट हो गए उनके हृदय में। ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे थे और आनंद का अनुभव कर रहे थे, उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया था। किंतु ध्रुव महाराज ने वायु लेना बंद कर दिया था और भगवान को हृदय में धारण किया था, उससे सारे संसार के जीवों का श्वास रुद्ध होने लगा ध्रुव महाराज की तपस्या से। और ध्रुव महाराज पांचवें महीने में जब वायु लेना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय तक वो प्राणायाम में प्रवीण हो गए थे, तो एक पैर पर खड़े थे, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज के चरण के भार से पृथ्वी दब गई थी, इतने भारी हो गए भगवान को अपने हृदय में धारण करके और वायु को बंद करके, तो सारे जीव श्वास रुद्ध अनुभव करने लगे। देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर पहुंच गए और उनको भगवान विष्णु से निवेदन किया कि सारे जीवों का श्वास रुद्ध हो रहा है, आप कुछ इसका उपचार कीजिए। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यह देवगण, तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तानपाद नंदन ध्रुव अब कठोर तपस्या में मग्न है, उन्होंने वायु लेना बंद कर लिया कर दिया है और इसी के कारण सभी का श्वास रुद्ध सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, और मैं अति शीघ्र जाकर ध्रुव को उसके उसकी कठिन तपस्या से निवृत्त कराऊं। तुम लोग देवलोक में निश्चिंत होकर जाओ, यह कहकर भगवान गरुड़ के ऊपर आसीन होकर ध्रुव महाराज के पास पहुंचे, जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे मधुबन में। अभी भी वो स्थान है मधुबन में जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, वो ध्रुव टीला के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान प्रकट हो गए ध्रुव महाराज के सामने, किंतु ध्रुव महाराज तो चक्षु बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे अपने हृदय में। तब जब ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे, उस समय अचानक भगवान को दर्शन कर रहे थे हृदय में, तो भगवान अचानक ध्रुव महाराज के हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज और भगवान का दर्शन नहीं कर सके, तो वो विचलित हो गए कि ये क्या हो गया, मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, भगवान का दर्शन कर रहा था, अब भगवान अंतरित हो गए। तो तुरंत उन्होंने चक्षु खोल दिए, चक्षु बंद किए थे खोल दिए। तो जब चक्षु खोलते हैं, देखते हैं कि वही भगवान जिनका ध्यान वो अंतर में कर रहे थे, वही भगवान उनके समक्ष खड़े हैं अपने स्वरूप। तो भगवान को अपने सामने देखकर ध्रुव महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके शरीर में एक सिहरन सा अनुभव हुआ। उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया भगवान को देखकर। उनकी वाणी गदगद हो उठी, वो कुछ बोल नहीं पाए भगवान, और आनंद से उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगी। तो ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े, दंड के समान, जिसको दंडवत कहा जाता है। दंडवत का यही अर्थ है कि दंड के समान गिर जाना किसके चरण में। तो ध्रुव महाराज दंड के समान भगवान के चरणों में गिर पड़े, उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं अपने नेत्रों से, और ऐसा दर्शन कर रहे हैं कि जैसे भगवान के सुंदर मुखमंडल, उनके नेत्र, उनके बक्षदेश और चरण कमल, इन सबको, ये इतने सुंदर थे और सुगठित थे भगवान के, कि ध्रुव महाराज जैसे अपनी आंखों से भगवान के सुंदर रूप का पान कर रहे हैं। और इस प्रकार ध्रुव महाराज बार बार भगवान के चरणों में, चरण को पकड़ने के लिए इच्छा कर रहे हैं, भगवान को आलिंगन करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात चल रही है। और उसके साथ ध्रुव महाराज भगवान की कुछ स्तुति करना चाह रहे थे, प्रार्थना करना चाह रहे थे, क्योंकि यदि कोई भगवान के पास आता है, भगवान को प्रणाम करने के उपरांत भगवान से स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के गुणगान करना चाहिए। और यदि कोई गुणगान कर नहीं सकता, कम से कम तो भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ध्रुव महाराज चाह रहे थे भगवान का कुछ गुणगान करने के लिए, किंतु 5 वर्ष का बालक ये भगवान का क्या गुणगान कर सकते हैं, उनको क्या ज्ञान है। तो ध्रुव महाराज ने अनुभव किया कि उनमें कोई ज्ञान नहीं है भगवान का गुणगान करने के लिए, वो कैसे भगवान का गुणगान कर सकते हैं, कैसे स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं, क्या बोलेंगे भगवान से। तो भगवान जो कि अंतर्यामी है, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, तो भगवान समझ गए ध्रुव महाराज क्या चाह रहे हैं। तो भगवान ने अपने शंख से ध्रुव महाराज के मस्तक का स्पर्श किया। जब ध्रुव महाराज के मस्तक में भगवान का शंख स्पर्श हुआ, तो तुरंत ध्रुव महाराज की सारी इंद्रियां उज्जीवित हो गई, जीवित हो गई। इसका अर्थ है कि इसके पहले इंद्रियां सुप्त अवस्था में थी, क्योंकि जब हम अज्ञानता में रहते हैं, माया के वशीभूत होते हैं, हमारी इंद्रियां सुप्त अवस्था में रहती, किंतु भगवान के शंख स्पर्श से ध्रुव महाराज की इंद्रियां उज्जीवित हो गई, और ध्रुव महाराज को सारा ज्ञान उनके हृदय में ये ज्ञान का आलोक उद्भासित होने लगा, क्योंकि भगवान का जो शंख है ये शंख ज्ञान का प्रतीक है। तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, ये तो कहीं स्कूल कॉलेज गए नहीं थे, उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे, गुरुकुल में जाते थे, किंतु 5 वर्ष की आयु में ध्रुव महाराज नहीं गए थे गुरुकुल, तो उनको कोई ज्ञान नहीं था भगवान के संबंध में, किंतु भगवान के शंख स्पर्श प्राप्त होकर उनमें ज्ञान का उदय हो गया। तो ध्रुव महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुतियां की, और सुंदर स्तुति जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ध्रुव महाराज भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे सुप्त इंद्रियों को जागृत कर दिया है और आप केवल मेरे सुप्त इंद्रियों को अपने जागृत नहीं किया है, इस सृष्टि के जो प्रथम जीव ब्रह्मा है, ब्रह्मा की इंद्रियों को भी आपने जागृत किया था, जो सृष्टि के प्रथम जीव, क्योंकि ब्रह्मा का जब जन्म हुआ कमल के ऊपर, ब्रह्मा चारों ओर अंधकार देख रहे थे, यह अज्ञान का अंधकार था, और ब्रह्मा जी तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके, तपस्या के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके भगवान की कृपा प्राप्त हुए थे, जिसके कारण ब्रह्मा की इंद्रियां भी जागृत हो उठी, ब्रह्मा जी ज्ञान प्राप्त हुए भगवान से, दिव्य ज्ञान। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करते हैं और इंद्रिय सुख के लिए ललायित रहते हैं, ये स्वाभाविक है, जो माया के वशीभूत है, माया वशीभूत जीव, और विशेष रूप से मनुष्यों के बारे में कहा जा रहा है कि मनुष्य माया के वशीभूत होकर अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग को मानता है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो लोग आपके पास आते हैं आपसे कुछ इंद्रिय भोग के लिए वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से, ये लोग मूर्ख हैं, मेरे जैसा मूर्ख है। ध्रुव महाराज अपने को भी मूर्ख बता रहे हैं कि मेरे जैसे मूर्ख लोग आपके पास आते हैं इंद्रिय भोग की कामना करने के लिए, आप जबकि वांछा कल्पतरु हैं, आप व्यक्ति जो चाहे आप उसको प्रदान कर सकते हैं, किंतु आप व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर सकते हैं, इसलिए आपका नाम मुकुंद है, भगवान का नाम मुकुंद है, क्योंकि वो मुक्ति दाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से, संसार के दुखों से व्यक्ति को सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि वे लोग मूर्ख हैं, मुझ जैसा लोग जो आपके पास आते हैं, जो मुक्ति प्रदाता है, वो मुक्ति मांगने से इस संसार से उनकी मुक्ति हो जाएगी, आपके धाम को वो प्राप्त हो जाएंगे, किंतु ये लोग आपके पास आते हैं कुछ भौतिक सुख मांगने के लिए। जिस प्रकार ध्रुव महाराज आए थे कुछ भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास, इसलिए अपने को भी मूर्ख मान रहे हैं और दूसरों को भी कह रहे हैं कि सभी मूर्ख हैं जो भगवान के पास आते हैं भौतिक सुख के लिए। तो उदाहरण देते हैं यदि कोई सम्राट के पास जाता है, राजा के पास, जो चक्रवर्ती सम्राट है, तो उस राजा के पास जाकर व्यक्ति जो कुछ चाहे तो मांग सकता है, किंतु यदि व्यक्ति कोई सम्राट के पास जाएगा तो जितना धन चाहेगा सम्राट दे सकता है कि वो जीवन में और किसी के पास नहीं जाएगा मांगने के लिए। किंतु यदि कोई व्यक्ति जाएगा सम्राट के पास और उनसे 5 रुपया मांगेगा, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? तो उसी प्रकार कोई भगवान के पास आएगा, कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण व्यक्ति को संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु ये न मांग करके कोई जाएगा मुझे धन दीजिए, जन दीजिए, सुंदर स्त्री दीजिए, यही मांगने आएगा भगवान के पास, तो मूर्ख नहीं है तो क्या? ध्रुव महाराज कह रहे, क्योंकि ये जो भौतिक लाभ के लिए हम भगवान के पास आते हैं ये सब अस्थाई है। चाहे भगवान हमें वरदान दे भी दें, हम कितना दिन भोग करेंगे उसको? ये संसार अस्थाई है, हमारा शरीर भी अस्थाई है और हमारा भोग भी अस्थाई है। तम अस्थाई सुख के लिए हम भगवान के पास जाना ये तो मूर्खता है। यदि हम भगवान के पास आते हैं तो हम स्थाई सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे, इसके लिए हमें मांगना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति आपके पास आते हैं ये अस्थाई लाभ के लिए। इसका अर्थ है कि ध्रुव महाराज जिस कामना को लेकर भगवान के पास आए थे, ब्रह्मा से भी उच्चतर लोक को प्राप्त होने के लिए, अब भगवान के दर्शन करने के पश्चात ध्रुव महाराज की वह कामना और नहीं रह गई। अभी वो लज्जित अनुभव कर रहे हैं, अपने को मूर्ख इसलिए कह रहे हैं कि मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए आया, तपस्या हमने की और एक छोटा सा लाभ के लिए, एक उच्च पद प्राप्त करने के लिए, ये हमारी मूर्खता है। जबकि भगवान हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, अपने धाम प्रदान कर सकते हैं, इसलिए ध्रुव महाराज लज्जित हो रहे हैं। तो भगवान से कहते हैं, स्थाना विलासी तपसि स्थितो हम तं प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम। हे देव, हे प्रभु, आप देव मुनिन्द्र गुह्य हैं, आपको देवतागण मुनिगण ये आपको समझ नहीं सकते, आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, आप उनके लिए भी दुर्लभ है। किंतु मेरा सौभाग्य है कि मुनिजन हजारों वर्ष तक तपस्या करके आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु मेरा सौभाग्य है कि केवल 6 महीने में, ये 6ठा महीना चल रहा था, 6 महीने में मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। किंतु स्थानाभिलाषी होकर मैं जब आया था तपस्या करने के लिए, तो यही इच्छा लेकर आया था कि ब्रह्मा जी के राज्य से भी मुझे उच्चतर राज्य चाहिए, उच्चतर स्थान के अभिलाषी होकर मैं आपके पास आया था तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त होने के लिए। किंतु आज मैंने आपको प्राप्त किया है, त्वं प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम। जो देव देवता और मुनिन्द्रों के लिए दुर्लभ है, ऐसे भगवान को मैंने आज प्राप्त कर लिया। काचं विचिन्नं अपि दिव्य रत्नं स्वामिन कृतार्थस बलम न जाचे। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपके पास कांच के टुकड़े मांगने आया था, तो ये जो भौतिक लाभ भौतिक वरदान ध्रुव महाराज एक उच्चतर राज्य चाहते थे ब्रह्मा के राज्य से, उस राज्य को ध्रुव महाराज कांच के टुकड़ों के साथ तुलना कर रहे हैं कि मैं कांच के टुकड़े मांगने के लिए आपके पास आया था, किंतु उसके बदले मुझे दिव्य रत्न, आप जैसे दिव्य रत्न प्राप्त हो गए, मैंने आपको प्राप्त कर लिया। तो यदि किसी को दिव्य रत्न प्राप्त हो जाता है तो कांच के टुकड़ों से उसको क्या लाभ मिलेगा, वो कभी कांच के टुकड़ों को नहीं चाहेगा जिसको रत्न मिल गया। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि प्रभु, अब हमने आपको प्राप्त किया है, रत्न को प्राप्त किया है, आप जैसे रत्न को, तो अब मुझे उन कांच के टुकड़ों से क्या लाभ है, उस उच्चतर राज्य या स्थान का क्या लाभ है, मुझे अब नहीं चाहिए। जिस उद्देश्य में आया था कठोर तपस्या करने के लिए, मुझे अब वो राज्य नहीं चाहिए, आप मुझे प्राप्त हो गए तो मैं सब कुछ प्राप्त हो गया। तब ध्रुव महाराज यही कामना करते हैं कि भक्तिं मोहु प्रवहतं तुहि मे प्रसंदो भूयात अनंत महतं अमल सयानं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर यही कृपा कीजिए कि जो साधु जन भक्त जन आपकी भक्ति में सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं, मुहु प्रवहतां भक्ति, जिनके हृदय में आपके प्रति भक्ति नदी की धारा के समान निरंतर प्रवाहित होती, ऐसे भक्तजनों का संग मुझे प्रदान कीजिए। जो लोग भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महान भक्तों का संग मुझे प्रदान कीजिए। जनन जसा उल्बणं गुरु व्यसनं भवाब्धि नेस्य भवत गुण कथा मृतपान मत्त। तो ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त करने से क्या लाभ मिलेगा, ऐसे सत्संग से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये पदं पदं विपदं, इस संसार में पग पग पर विपत्तियां हैं, कब किसका क्या हो जाएगा कोई पता नहीं, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, किसी भी समय कोई भी विपत्ति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति इस संसार में हर समय भयभीत अवस्था में रहता है, और इस संसार सागर को पार करना ये इतना सरल नहीं है, इन विपत्तियों को पार करना इतना सहज नहीं है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए, जिनके संग में रहकर मैं आपके आपकी दिव्य कथा आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करता रहूंगा, और आपके नामामृत का पान करता रहूंगा। इस प्रकार गुण कथामृत, आपके दिव्य गुण का आस्वादन आपकी कथा के माध्यम से करता रहूंगा, जिससे कि मैं अति सहज रूप से इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। जो भवसागर अनेक तरह की विपत्तियों से ये भरा हुआ, पग पग पर विपत्तियां, तो इसको पार करने के लिए आपके गुण कथामृत ही एकमात्र उपाय, साधु संघ में आपके गुणों का लीलाओं का वर्णन इसका श्रवण करना और आपके नाम गान करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ध्रुव महाराज इस प्रकार की कामना करते हैं तो भगवान अब ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि वेदांत व्यवस्थितंग हृदय राजन्य बालक। तो भगवान कहते हैं हे राजकुमार ध्रुव, तुम्हारे हृदय में क्या है मैं जानता हूं। तुम किस लिए मेरे पास आए हो, तपस्या करके मुझे संतुष्ट करने के लिए प्रयास तुमने किया है, तुम्हारे हृदय में क्या है मैं जानता हूं। तत् प्रयच्छामि भद्रंते दुरापंगपि सुब्रता। यद्यपि ध्रुव महाराज आप ब्रह्मा के राज्य से उच्चतर राज्य की कामना नहीं कर रहे हैं, ये नहीं मांग रहे हैं भगवान से, किंतु भगवान इतने कृपामय हैं, ध्रुव महाराज की इच्छा को वो जानते हैं कि किस लिए ध्रुव आया है उनके पास, ये कठोर तपस्या कर रहा है, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में क्या है, किस उद्देश्य से तुम आया है मैं जानता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे राजकुमार ध्रुव, यद्यपि तुम्हारी कामना को पूर्ण करना असंभव है, फिर भी मैं तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। यह भगवान का विशेष वरदान ध्रुव महाराज के लिए। फिर कहते हैं नान्य अधिष्ठित भद्र जत राजिष्णु ध्रुवक्षिते। तो भगवान कह रहे हैं ये जो ध्रुव तारा है, ये एक लोक है, ध्रुव लोक, ये ध्रुव महाराज से पहले भी इसकी स्थिति थी। ये वस्तुतः भौतिक जगत में वैकुंठ लोक है, जो ध्रुव लोक है ये भौतिक जगत का अंश नहीं है, ब्रह्मांड का अंश नहीं है, किंतु हर ब्रह्मांड में भगवान निवास करते हैं, भगवान का अपना लोक होता है। हर ब्रह्मांड में गर्भदक्षाय विष्णु निवास करते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु भी निवास करते हैं, जो सारे जीवन के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और हर अणु परमाणु में व्याप्त है, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो उनका एक लोक है क्षीर सागर में श्वेत द्वीप, ये भौतिक जगत में ही है। तो कोई भौतिक लोक इस ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक के ऊपर नहीं है, किंतु भगवान का लोक है जिसको ध्रुव लोक यहां कहा गया है। तो भगवान उस ध्रुव लोक को महाराज ध्रुव को प्रदान कर रहे हैं और वो वैकुंठ लोक है इस भौतिक जगत में। तो भगवान कहते हैं कि इस ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा ये सारे ग्रह नक्षत्र करते हैं, तो आप लोग आकाश में भी ये ध्रुव तारा को देख सकते हैं, उनके चारों तरफ सप्तर्षि मंडल है जो प्रदक्षिणा करते हैं ध्रुव तारा को। और ये जो लोक हैं ये प्रलय काल में ब्रह्मा जी के कल्पांत जिसको कहा जाता है, कल्पांत प्रलय, ब्रह्मा जी के एक दिन का जब अंत होता है, उनकी रात्रि प्रारंभ होती है, तो एक प्रलय होता है। तो कल्पांत प्रलय में भी ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता है। तो जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, जो प्रलय होता है, उसमें सारे विश्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ध्रुव महाराज को कि तुम्हें चाहिए था ब्रह्मलोक से उच्चतर लोक, तो मैं ध्रुव लोक तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम्हारी जो भौतिक कामना थी उसको पूर्ण करने के लिए। और जब पूरा ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब तुम मेरे वैकुंठ लोक में आओगे। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को भगवान ने वर प्रदान कर दिया, भौतिक वरदान और आध्यात्मिक वरदान, अपना लोक भी प्रदान कर दिया, उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। अब कह रहे हैं प्रस्थित हेतु बनंग पित्रा दत्तागंग धर्म संश्रय। और जब तुम्हारे पिता उत्तानपात वन में चले जाएंगे तुम्हें राज्य देकर, तब तुम 36,000 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी का राज्य का शासन करोगे। एक तो ब्रह्मा जी से उच्चतर लोक उनको प्राप्त हो गया, और विमाता ने जो कहा था कि अपने पिता के राज सिंहासन में ध्रुव नहीं बैठ सकते, तो भगवान कह रहे हैं तुम अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठोगे और 36,000 वर्ष तक राज करोगे। तो भगवान जिस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान उसको सब कुछ दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें पिता का राज सिंहासन भी प्राप्त होगा और 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के समय तक तुम्हारी इंद्रियां कभी शिथिल नहीं होंगी, अर्थात तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। ये वरदान भी भगवान ने दे दिया ध्रुव महाराज। संसार में जो भी जन्म लेता है वो वृद्ध अवश्य होता है, किंतु ध्रुव महाराज के क्षेत्र में भगवान ने वरदान दिया कि वो वृद्ध नहीं होंगे, उनकी इंद्रियां युवावस्था के समान हर समय सतेज रहेंगे, अर्थात वो जीवन को भोग कर सके, वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोग करेंगे। और पुनः भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा भ्राता उत्तम ये जब मुर्गया में गया होगा तो उस समय वन में वो मारा जाएगा, और तुम्हारी विमाता सुरुचि जिसने तुम्हारा अपमान किया है वो अपने पुत्र के विरह में पुत्र को खोजती हुई वो जब वन में जाएगी तो वन की दाबाग्नि में वो अपना प्राण त्याग देगी। तो ध्रुव महाराज को अपमानित करने का दंड भगवान बता रहे हैं ध्रुव को, तुम्हारी विमाता को इस प्रकार मिलेगा, वो अपने पुत्र को खो बैठेगी, पुत्र को हराएगी और स्वयं भी वन की अग्नि में प्राण विसर्जन करेगी। तो इसका अर्थ है कि कोई भगवान के भक्त है, वैष्णव है, ऐसे वैष्णव को कभी भी अपमानित नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति ऐसे वैष्णव भक्त को अपमानित करता है वो वैष्णव अपराध करता है, और उस अपराधी को भगवान भी क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार दुर्वासा मुनि को भगवान ने क्षमा नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था, इसलिए व्यक्ति को केवल भक्तों का अपमान नहीं करना है, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों को उद्वेग प्रदान नहीं करना है। जो व्यक्ति दूसरों को उद्वेग प्रदान नहीं करता है भगवान उस पर संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने जब वरदान दिया ध्रुव महाराज को और भगवान अंतर्ध्यान हो गए ये वरदान देकर, किंतु ध्रुव महाराज सुखी नहीं हुए। जब इतना सारा वरदान ध्रुव महाराज को प्राप्त हो गया तो फिर भी ध्रुव महाराज क्यों सुखी नहीं थे? ध्रुव महाराज पश्चाताप कर रहे थे कि हम क्यों एक भौतिक अभिलाषा लेकर आए थे भगवान को संतुष्ट करने के लिए, एक तुच्छ राज्य मांगने आए थे, ब्रह्मा जी से उच्चतर राज्य मांगने भगवान के पास आए थे। जो भगवान कल्पतरु है, मुक्तिदाता है, क्योंकि मेरी यही अभिलाषा थी इसलिए भगवान ने मुझे मुक्ति प्रदान नहीं की। हमने 6 महीने में भगवान का दर्शन किया और यदि मुक्ति के लिए मैं तपस्या करता तो भगवान तुरंत मुझे मुक्ति प्रदान कर देता, मैं भगवान के धाम में चला जाता। अब मैं मेरी ये भौतिक अभिलाषा के कारण अब मुझे संसार में रहना पड़ेगा 36,000 वर्ष, राज्य शासन करना पड़ेगा। तो बहुत दुखी होकर घर लौट रहे ध्रुव महाराज, और महाराज उत्तान पाद तब तक उनको ये समाचार मिल चुका था नारद मुनि से कि ध्रुव अब वरदान प्राप्त होकर वो आ रहे हैं घर पर, तो उनके स्वागत के लिए महाराज उत्तान पाद आए थे। जो भी हो, तो बाद में ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य शासन किया और अंत में जब उनका अंतिम समय आया तो उस समय ध्रुव महाराज राज्य त्याग करके अपने पुत्र को राज्य देकर वो चले गए थे बद्रिकाश्रम। वहां जिस प्रकार बचपन में तपस्या कर रहे थे अब बद्रिकाश्रम में उसी प्रकार तपस्या करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान को संतुष्ट करने लगे। तो जब ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से भगवान में निमग्न हो गए और भगवान ने कहा था कि तुम इसी शरीर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगी और तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी, ऐसा वरदान किसी ने प्राप्त नहीं किया होगा संसार में। तो ध्रुव महाराज के लिए बैकुंठ से विमान आया और वो विमान कैसा था, सोने का विमान था और उस विमान में इंजन नहीं था, आजकल जैसे एरोप्लेन में इंजन होता है और उसमें पेट्रोल या फ्यूल डालना पड़ता है। तो जो विमान आया था बैकुंठ से उसमें इंजन नहीं था और वो सोने का बना था, आजकल का विमान कैसे बना है, स्टील का। तो ध्रुव महाराज के लिए बैकुंठ से विमान आया और वो विमान कैसे चलता है, इंजन नहीं है तो कैसे चलता है, इच्छा मात्र से। तो उसमें बैठने वाले जो बैकुंठ के भक्त थे वो जहां इच्छा करेंगे विमान वहां लेकर पहुंचा देगा, विमान को ड्राइविंग करने की आवश्यकता नहीं है, चलाने की आवश्यकता नहीं, केवल इच्छा करना है हमें उधर जाना है, विमान अपने आप वहां जाकर पहुंचा देगा। तो कौन सा विमान श्रेष्ठ है, आजकल का विमान या उस समय का विमान? इसमें तो ध्रुव महाराज के लिए बैकुंठ से विमान आया उनको लेने के लिए और उसमें विष्णु दूत भी विमान लेकर आए थे ध्रुव महाराज को लेने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने जब देखा बैकुंठ से विमान आया है तो उन्होंने स्नान किया और विमान की प्रदक्षिणा की विमान में बैठने से पहले, और वहां पर जितने मुनि ऋषिगण थे उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया ध्रुव महाराज, सभी का आशीर्वाद लिया। ये नहीं है कि विमान आ गया हम चलते हैं तो सभी को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, विमान की प्रदक्षिणा की अब विमान में चढ़ने के लिए जा रहे हैं ध्रुव महाराज, तो उसी समय मृत्यु देवता वहां आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए ध्रुव महाराज के सामने। आप कल्पना कीजिए, मृत्यु से सभी डरते हैं, कभी किसी के सामने मृत्यु हाथ जोड़कर आकर खड़ा नहीं होता, किंतु ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु के देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्यों? ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने जा रहे हैं तो मृत्यु देवता निवेदन कर रहे हैं ध्रुव महाराज से कि हमारा थोड़ा उपयोग कीजिए विमान में चढ़ने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? ध्रुव महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रखा, मृत्यु को सीढ़ी के रूप में व्यवहार किया विमान आरोहण करने के लिए। तो जो भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, ये लोग ऐसे मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर वैकुंठ का विमान आरोहण करते हैं। तो ध्रुव महाराज वैकुंठ के विमान में उसी देह में, उनका शरीर बदला नहीं है, उसी देह से वैकुंठ के विमान में बैठ गए। अब विमान चलने लगा तो ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि अब मैं तो वैकुंठ जा रहा हूं, किंतु मेरी माता जिसने बचपन में मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए उपदेश दिया था, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए उपदेश दिया था, तो माता तो पीछे रह गई, मैं अकेला जा रहा हूं वैकुंठ, मेरी माता का क्या होगा? तो जो विष्णु तो आए थे वैकुंठ का विमान लेकर, वो समझ गए ध्रुव महाराज क्या सोच रहे हैं, अपनी माता के बारे में सोच रहे हैं। तो उन दोनों ने दिखा दिया ध्रुव महाराज को, ध्रुव देखो तुम्हारे विमान के आगे और एक सोने का विमान वैकुंठ जा रहा है, और उस विमान में तुम्हारी माता बैठी हुई है। तो ध्रुव महाराज से पहले उनकी माता जा रही है वैकुंठ, इसलिए जो पिता माता अपनी संतानों को कृष्ण भक्ति में नियोजित करते हैं, तो संतान यदि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो पिता माता को उद्धार करता है। और केवल पिता माता नहीं, सात पुरुष, माता का सात पुरुष और पिता के सात पुरुष, 14 पुरुष जो पूर्वज हैं उनका उद्धार कर देता है। और यदि पत्नी है और पत्नी पतिव्रता है तो पत्नी के भी सात पुरुष उद्धार हो जाते हैं। तो एक कृष्ण भक्त बनने से कितने लोगों का लाभ होता है इसमें हम देख सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि कुलं पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा वा वसतिश्च धन्य नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां येषां कुले वैष्णव नामधेय। जिसके वंश में कोई वैष्णव जन्म ग्रहण करता है, भगवान का भक्त जन्म ग्रहण करता है, वो वंश धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जो माता ऐसे वैष्णव को जन्म देती है, माता का ऐसे भक्त को जन्म देना सार्थक हो जाता है। गांधारी ने भी सब पुत्रों को जन्म दिया था किंतु उनका जन्म सार्थक नहीं हुआ क्योंकि ये सब कुलंगार निकले। तो कृष्ण भक्त पुत्र को जन्म देना, माता का जन्म देना सार्थक है। और जो पूर्व पुरुष अपने पाप कर्मों के कारण नर्क का दंड भोग कर रहे हो, तो उस कुल में वंश में यदि कोई कृष्ण भक्त बनता है तो ये पूर्वज सब नर्क से उद्धार होकर स्वर्ग में जाकर नृत्य करने लगते हैं। और जहां पर ऐसे वैष्णवों का जन्म हुआ है वो जन्म स्थान दूसरे लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज के जीवन से हम यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हम स्वयं तो संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, अपने परिवार के, अपने वंश के, अपने पूर्वजों को भी हम उद्धार कर सकते हैं पिता माता के साथ। जय श्री ध्रुव महाराज की, जय श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री गौरनिताय की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराज की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि ओ। थोड़ा